कर्मकांड शिविर लेक्चर नंबर 9 संस्कृत टीका के आधार से और उसका ये हिंदी अनुवाद है जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये दूसरा अपना अधिकार शुरू है, बंध उदय और सत्व का अधिकार। बंध की अपनी चर्चा चल रही है अभी, जो कुछ किसी ने बताया कि ये जो आपका जो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की वो बात समझी नहीं है, थोड़ा समझा के चलिए। यही से प्रश्न है ना? देखो हमने क्या देखा है कि बंध चार प्रकार का होता है। कौन से चार प्रकार हैं? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध। तो उसमें एक समान नहीं होता है, उसमें हीनाधिकता होती है। अब प्रकृति बंध की बात थोड़ी अलग रखते हैं। उसमें यहाँ पर यानी स्थूल कथन में कहते हैं उसमें उत्कृष्ट आदि भेद नहीं होते, परंतु उसमें शादी वगैरह भेद होते हैं। परंतु हमने ये बात देखी महाबंध के आधार से, जहाँ अधिक संख्या में प्रकृति बनती है उसको कहेंगे उसका प्रकृति बंध का उत्कृष्ट प्रकृति बंध। इस तरह से वहाँ घटित किया उन्होंने मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति पर भी, यानी जहाँ 8 प्रकृतियों का बंध होगा आयु सहित मूल प्रकृतियों का, उसको कहेंगे उत्कृष्ट प्रकृति बंध, और जहाँ नहीं होता है तो उसके कहेंगे अनुत्कृष्ट। एक वेदनी बनती है तो कहेंगे जघन्य, या वेदनी को अकेले नहीं गिनते हुए कहेंगे दसवें गुणस्थान में 6 प्रकृतियां बनती है मूल प्रकृति, उसको भी जघन्य कहेंगे। यानी कहीं कहीं वो एक बंध को नहीं भी गिनते हैं वेदनी को, अलग अलग अपेक्षाओं से कथन करते हैं। तो ये प्रदेश बंध की बात हुई, सॉरी प्रकृति बंध की बात हुई। प्रदेश बंध में क्या होता है, उत्कृष्ट होगा या अनुत्कृष्ट, जघन्य होगा या अजघन्य, किस तरीके प्रदेश बंध किस प्रपोर्शनेट में होता है। तो जितना योग ज्यादा उतना प्रदेश बंध ज्यादा, जहाँ योग कम वहाँ प्रदेश बंध भी कम। अब ये योग कहाँ कम ज्यादा होता है, किससे मिनिमम होता है, कहाँ ज्यादा होता है, उसके भी योग स्थान की जब चर्चा आएगी उसमें उसकी बात होगी, क्योंकि उसमें भी 3 प्रकार के योग होते हैं। और भव धारण करने के पहले समय में जो योग होता है इसका नाम उपपाद योग, वो मिनिमम होता है। उसमें भी जो सूक्ष्म निबोध लब्धि अपर्याप्त को सबसे मिनिमम होगा, उससे एक एक जो 14 जीव समास में किस तरह से वो हीना अधिक अधिक होते हैं उसका वर्णन आने वाला है। कहाँ होता है उसकी बात छोड़ देते अभी, वो जघन्य होगा और नहीं होता उसको क्या कहेंगे, अजघन्य। उत्कृष्ट किसके होगा, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट योग हो सकता है। यहाँ योग में संकलेश से कुछ लेना देना नहीं, संगी पंचेंद्रिय है वो मिथ्या दृष्टि हो या अरहंत अवस्था वाला हो, योग कहीं भी जो संगी के योग्य जो योग स्थान है वो उन सबके हो सकते हैं, जिसको हम परिणाम योग स्थान कहते हैं। पहले समय वाला वो योग सहयोगी को नहीं होगा या वहां पर नहीं होगा, क्योंकि जन्म का पहला समय जिस गुण स्थान में हो सकता है वहां वो उपपाद योग हो सकता है। यानी जहां जो योग जैसा होगा उसके अनुसार वहां प्रदेश बंध होता है। तो जहां उत्कृष्ट प्रदेश बंध है और अन्यथा अनुत्कृष्ट है। तो उत्कृष्ट प्रदेश बंध का होगा यानी प्रदेश ने किसी पर्टिकुलर प्रदेश पर प्रकृति में अधिक से अधिक परमाणु कब मिलेंगे, अकेला योग ज्यादा से नहीं चलेगा, उसमें भी और एक कंडीशन होगी। जैसे हम 6 भाई बहन हैं, आप कितने, आपके पिताजी के कितने लड़के लड़की, 3 हैं, तो हमें जो मिलेगा हमारे पिताजी की तरफ से 6 में बंटवारा होगा और आपका 3 में होगा, तो अधिक माल किसको मिलेगा?
3
माल। और जिसको 2 ही है उसको 2 में बटेगा, उसको और ज्यादा मिलेगा माल। पैसे की बात जल्दी समझ में आती है। एक समय प्रबद्ध कहाँ ज्यादा कम होता है, तो योग के अनुसार। तो अभी ये जो पूरा एक समय प्रबद्ध है, जब 8 कर्म बनते हैं तो 8 में बंटवारा होगा, आयु नहीं बनती तो 7 में बंटवारा होगा, और आयु भी नहीं बनती और मोहनीय भी नहीं बनता है, 10वें गुणस्थान में 6 में बंटवारा होगा। तो मूल प्रकृतियों में मैक्सिमम द्रव्य कहाँ आएगा? 10वें गुणस्थान में आएगा, क्योंकि अकेला वेदनीय उसको नहीं गिना है, नहीं तो पूरा समय प्रबद्ध उसी को मिलेगा 11वें 12वें 13वें में। समझ में आती है? तो ये तो मूल प्रकृतियों में बंटवारा मेजर जो पार्ट है वो जहाँ 10 का बंद, 10वें गुणस्थान में 6 का बंद होता है, वहां उसमें प्रदेश ज्यादा मिलेगी। ये तो बात ख्याल में आई ना? इस तरह से उसको क्या कहेंगे, उत्कृष्ट प्रदेश बंद। और केवल 10वां गुणस्थान ही नहीं, 10वें गुणस्थान में संगी पंचेंद्री के योग्य जहां उत्कृष्ट योग होगा, उस जीव को, उस पर्टिकुलर जीव को वो उत्कृष्ट प्रदेश बंद होने वाला है प्रकृतियों का। ये बात ख्याल में आई? बात मिथ्यात्व में उत्कृष्ट प्रदेश बंद कब होगा? मूल प्रकृतियों में मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व नहीं समझना, मोहनीय समझना, मोहनीय में। उत्तर प्रकृतियों की बात नहीं कर रहे हैं। तो मोहनीय कर्म का बंधन कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक है? हाँ, मोहनीय, मोहनीय। हाँ नहीं नहीं, 10 में मोहनी का बंधन नहीं है, 9वें के अंत तक है। उसकी उत्तर प्रकृति की बात छोड़ो, मोहनीय कर्म कहाँ से कहाँ तक बनता है? 1 से 9 तक। तो जब 1 से 9 गुणस्थान तक जहाँ आयु का बंधन नहीं हो रहा है, 7 का बंध हो रहा है, तब मोहनीय में उत्कृष्ट उसका 1 7 पार्ट मिलेगा, उत्कृष्ट योग, वो सब कंडीशन लगा लेना उसमें। जिस बस समझ में आई बात? अब उसमें और भेद करके बताना है, एक एक प्रकृति के उत्तर प्रकृतियों में उत्कृष्ट कहाँ मिलेगा? जहाँ अधिक प्रकृतियां बनती है वहां प्रदेश कम, उसमें बंटवारा कम होगा। जहां मिनिमम प्रकृतियां बनती है उसमें बंटवारा ज्यादा होगा। अब वो हर एक कर्म पर घटित करेंगे, जब प्रदेश बंद की चर्चा आएगी तब उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि मूल प्रकृतियों में से उत्तर प्रकृतियां कहाँ कितनी बनती है, ज्ञानावरण की तो सर्वत्र 5-5 बनती है, उसमें तो कोई सवाल नहीं है। परंतु दर्शनावरण की हमने देखी थी, पहले और दूसरे गुणस्थान में 9 बनती है, तो 9 में बंटवारा होगा। अब समय दृष्टि हुआ, उसको वो 3 नहीं बनेगी, ज्ञान वृद्धि वगैरह, उसका 6 में बंटवारा होगा। 8वें गुणस्थान में निद्रा प्रचला की बंदी विच्छित्ति होने के बाद 4 में बंटवारा होगा, तो वहां उसमें ज्यादा द्रव्य मिलेगा। इस तरह से हर एक प्रकृति का कहां हो सकता है उसके कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे हम, तो उसको कहेंगे वहां उत्कृष्ट प्रदेश बनना।
जो अपन एक समय प्रबंध के जो परमाणु बांधते हैं, तो 7 कर्मों में जो बंटवारा होता है समान होता है?
समान नहीं होता, थोड़ा ही नाधिक होता है। पहले में एक पार्ट बाजू में रख देते हैं, फिर वो एक पार्ट बाजू में रखकर उसके साथ समान भाग करेंगे। वो एक बाजू में रखा ना, फिर उसका बहुभाग एक भाग, बहुभाग एक भाग करेंगे। वो आएगा जब करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। वो जब प्रदेश बंद में बंटवारा कैसे होता है प्रत्येक कर्म में, तब उसकी बात आएगी। यानी जहाँ जघन्य प्रदेश मिलते तो कहेंगे जघन्य प्रदेश बंद, यानी ये उत्कृष्ट जघन्य क्या है वो हमने देखा। अब जहाँ उत्कृष्ट प्रदेश बंद हो रहा है, क्या वो सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, चारों एक साथ मत कंसिडर करो। ये सादि है क्या अनादि है ये पहले देखो। अभी मूल प्रकृतियों में उत्कृष्ट प्रदेश बंध हमने 10वें गुणस्थान में देखा, तो जब तक 10वां गुणस्थान नहीं प्राप्त हुआ था तो अनादि से कैसा बंध हो रहा था उनमें, अनुत्कृष्ट हो रहा था, तो उसको हम अनादि कहेंगे। 10वें में फिर 9वें में आ गया तो अनुत्कृष्ट होने लगा, तो उसको सादी भी कहेंगे, अनादि भी है सादी भी है। अब ध्रुव रूप जो दसवें गुणस्थान में कभी जाएगा नहीं, उसको तो अनादि से यानी ध्रुव रूप से वो चलेगा, हमेशा अनुत्कृष्ट ही चलेगा, उसको कहेंगे ध्रुव। और जो बंध विच्छित्ति करके फिर नीचे आएगा या वो पार करके मोक्ष चला जाएगा, उसको क्या कहेंगे? वो अध्रुव कहेंगे। इस तरह से इन्हें सादी या अनादि, ध्रुव अध्रुव, ये हम घटित कर सकते हैं। चार्ट में क्या देखा था, देखो प्रदेश बंध में भी स्थिति बंध, ये चार्ट नंबर 5 देखो आपके, ये चार्ट में देखना है आपको। नहीं लगा ये विषय चलेगा ना अभी? अच्छा लगा ना, चल कसरत करनी पड़ेगी उसी के ऊपर लगा। अरे ऊपर वाले चेंज करो। हाँ प्रदेश बंध में भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य होते हैं, स्थिति बंध में भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य हो, अनुभाग बंध में भी उसके उदाहरण जुदे जुदे हो गए, ये चारों ही प्रकार होते हैं। यहाँ तक बात समझ में? अब इसका एक एक लेना, उत्कृष्ट में इसमें से क्या क्या लग सकते हैं, सादी है कि अनादि है कि ध्रुव है कि अध्रुव है, तो कहते एक और चार है, यानी उत्कृष्ट में सादी होगा और अध्रुव होगा, इसमें अनुत्कृष्ट जो है वो एक एक का अलग अलग सोचना, और उसके जो प्रकृतियां हैं उसका उदाहरण जुदा जुदा होगा। इसमें अनुत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट सादी भी है अनादि भी है ध्रुव भी है और अध्रुव भी। इसमें जो जघन्य नहीं वो अजघन्य है, वो अजघन्य किस तरह से है उसमें भी चारों ही घटित हो गए, और जो जघन्य होता है वो सादी है और वो अध्रुव है। ये मूल प्रकृतियों में तो हमने यहां घटित करके दिखाया था, तो इसको कहते हैं सादी अनादि ध्रुव अध्रुव, हमने एक एक में क्या क्या घटित होता है वो देखा था। अभी तो हमारी प्रकृति बंध की बात चल रही है, हम दोबारा इस चार्ट पर हर बार आने वाले हैं, स्थिति बंध के प्रकरण में भी आएंगे, प्रदेश बंध के प्रकरण में भी दोबारा आएंगे। वैसे प्रकृति बंध में तो हमने आपको बताया था 134 पेज निकाल कर, आगे की बात है ना, बीच का विचित्ति वाला प्रकरण छोड़कर आगे की बात बताई थी। तो ये अनुभाग बंध में भी फिर जब उसका विषय आएगा तब उसकी चर्चा फिर दोबारा करेंगे, क्योंकि ये विषय जल्दी कैच नहीं होता है, उत्कृष्ट क्या है अनुत्कृष्ट क्या है, तो उसके जो उदाहरण है वो जब उसका विषय आएगा तो उसको ज्यादा आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि स्थिति बंध कहाँ कितना जघन्य होता है किसका उत्कृष्ट होता है ये बातें अभी एक साथ सभी बातें ख्याल में नहीं आ रही, एक एक का प्रकरण करेंगे हम तो उसकी बातें ख्याल में आ जाएगी। अभी हम अपने विषय पर चलते हैं, बंधे विच्छित्ति की बात अपनी चल रही है, पहला वाला चार्ट अपना चलेगा। हमने देखा था बंध की विच्छित्ति किसको कहना, जिस गुणस्थान में यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा कितने कर्म बन सकते हैं, टोटल है सभी गुणस्थानों में मिलकर कितने बंधनीय यानी बंधन के योग्य, बंध के योग्य प्रकृतियां कितनी है, 120 है। उसमें मिथ्यात्व तो गुणस्थान में कौन सी नहीं बनती है, तीर्थंकर और आहार द्वीप, तो कितनी बन सकती है, कितनी बनती है अनेक जीवों की अपेक्षा, एट ए टाइम एक जीव को कभी भी इतने नहीं बन देगी। अलग अलग जीव जो मिथ्या दृष्टि है वो कौन कौन सी प्रकृतियां बांध सकते हैं, कहते 117 प्रकृतियां, तो 117 को हम बंध में गिनेंगे, बंध योग्य प्रकृतियां, और अबंध प्रकृतियों में हम कहेंगे तीन, वो यहाँ लिखा नहीं आपके पुस्तक में लिखा है वो बाद में बताएंगे आपको, तीन प्रकृतियों को अबंध कहेंगे। टोटल अपना हिसाब 120 का आना चाहिए, बंध किसने का, 117 का है, अबंध में 100, अबंध में 3 चली है, टोटल 120। अभी यहाँ जो बन रही है 117 में से ही 16 प्रकृतियाँ ऐसी है कि वो आगे के किसी भी गुणस्थान में नहीं बंधेगी। उसको कहेंगे इन 16 प्रकृतियों की बंध उच्चुति पहले गुणस्थान में होती है, आगे के नहीं होती है। इसका अर्थ क्या है? पहले में से दूसरे में जाना चाहिए उसकी उसका अर्थ नहीं है, पहले में ही बनती है, दूसरे तीसरे वगैरह कहीं पर भी नहीं बनती है। इसका अर्थ क्या है? उसकी बंध की उच्चुति पहले गुणस्थान में हुई है। यहाँ तक ख्याल में आई बात? तो हमने 16 प्रकृतियों के नाम भी देखे थे, याद हुए कि भूल गए? याद हो गए थोड़े बहुत? मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान, नपुसक वेद, असम्राट त्रिपाठिका सहन, ये चार अलग अलग याद रख। फिर एकेंद्रीय की 3 है, एकेंद्रीय, स्थावर और आकार, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, क्षत्रिय, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरकार। ये 16 प्रकृतियाँ पहले गुणस्थान वाली विच्छित्ति होने वाली प्रकृतियाँ, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे बढ़ेंगे, अभी 108 पेज पर थे ना। अब दूसरे गुणस्थान की चर्चा चलेगी, जो सासावन में बनती है, आगे किसी गुणस्थान में नहीं बनती, उसको क्या कहेंगे? ये सासावन में विच्छित्ति होने वाली प्रकृतियाँ। तो यहाँ देखते हैं हम 96 की टीका, पेज नंबर 108। दूसरे सासावन गुणस्थान के अंत समय में, देखो जब अंत समय में उसका अर्थ ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरे के बाद, दूसरे गुणस्थान के अंतिम समय के बाद जीव कहाँ जाने वाला है? नीचे ही जाता है, नियम से ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। पर अंत समय में इतनी विच्छित्ति होती, उसका अर्थ क्या है? तीसरे में नहीं बनती, यही उसका अर्थ है। नहीं तो प्रश्न ऐसा है, दूसरे के अंत के बाद पहला गुणस्थान शुरू होगा, क्या वहां बनती है? ऐसा नहीं उसका अर्थ। विच्छित्ति के प्रकरण में ऐसा नहीं सोचना कि अंत समय में अभी ऊपर जाता है क्या कोई, ऐसा नहीं उसका अर्थ है। यानी ऊपर के गुणस्थान में उसका बंध नहीं है, दूसरे गुणस्थान के अंत समय तक उसका बंध है। जो दूसरे गुणस्थान में बनती वो पहले में भी बंधेगी, पर पहले गुणस्थान वाली जो 16 प्रकृति है वो दूसरे गुणस्थान में नहीं बंधेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ यार? अभी ये 25 प्रकृतियां यहाँ बताएंगे। तो उसमें कौन कौन सी है? तो अनंतानुबंधी 4। देखो ये मोहनी के ही आधार से यहाँ गुणस्थानों का विभाजन हुआ है। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय है, मिथ्यात्व का बंध है। अनंतानुबंधी का उदय कहाँ तक है? दूसरे तक है, यानी पहले में भी है और दूसरे में भी है। पहले में भी बंध है अनंतानुबंधी का, दूसरे में भी बंध है, परंतु ऊपर कहीं उसका बंधन नहीं है। तो विच्छुत्य में हम अनंतानुबंधी 4 को गिनेंगे। स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, ये 3 सुबह उसकी बात हुई थी, 3 निद्रा ये यहाँ तक ही बनती है। यानी पहले और दूसरे गुणस्थान वालों को दर्शनावरण की 9 बंधेगी, तीसरे गुणस्थान से 6-6 ही बंधेगी। इसका अर्थ इसकी विच्छुत्ति हुई यहाँ पर। दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, ये 3 न्यगुर। अभी जो संस्थान है उसमें बीच वाले 4 लेना है, ऊपर का छोड़ना, नीचे का। तो पहले 6 संस्थान है वो पहले गुणस्थान में है। तो यहाँ कहते न्यग्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन, ये 4 संस्थान। सहनन में भी ऐसा ही लगाना, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और पीड़ित, यह 4 सहनन। यहाँ के बंद की बात चल रही, उदय की नहीं, उदय के रूप लज्जुदय है। अप्रशस्त विहाय गति, यानी उसका बंध यहीं तक है, दूसरे गुणस्थान तक। स्त्रीवेद, सुबह बात पूछी थी ना, नपुसक वेद की बंध उचित पहले में हुई, स्त्रीवेद की दूसरे में। इसके आगे के सभी गुणस्थानों में, यानी 9 तक जब तक वेद का उदय है, पुरुष वेद ही बंधेगा। उदय किसी का भी हो सकता है 9 गुणस्थान तक, यहाँ सब भाववेद की बात चल रही है। तीनों ही वेदों का उदय है, किसी जीव को पुरुष वेद का है, किसी को स्त्री वेद का है, किसी को नपुसक वेद का है। बंध सभी किसका करेंगे? पुरुष वेद का। तो स्त्री वेद नीच गोत्र, तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, ये तिर्यंच द्विक, उद्योग, क्योंकि वो तीर्यन गति के साथ ही बन सकती है, तो यहाँ भी बन सकती है तीर्यन चायु। ये 25 प्रकृतियां विच्छित्य रूप होती है। यहाँ अनंतानुबंधी चार तो गिनना, जिस गुणस्थान के जो कषाय है ना उसको वहां गिन लेना, तो अनंतानुबंधी की चार हो गई। फिर उसके बाद यहाँ स्थान वृद्धि की तीन बताई, निद्रा तीन प्रकार की बताई। यहाँ की ऑर्डर दुर्भग दुस्वर अनादि, उन्होंने पहले हमें याद किया था, वो अलग से किया था, दुर्भग दुस्वर अनादि होगा। फिर चार संस्थान और चार सहनन बीच वाले, यानी नगरोध परिमंडल, स्वातिक, उपजक और वामन, ये संस्थान, और वज्रनाराज, नाराज, अर्धनाराज के लिए सहन, अप्रशस्त व्यायगति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र, तीरंज गति, तीरंज गत्यानुपूर्वी और उद्योग और तीर्यंच, यानी तीर्यंच संबंधी चार होते हैं, तीर्यंच गति, तीर्यंच गत्यानुपूर्वी, उद्योग और तीर्यंच। जहाँ देखो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व भी है और अनंतानुबंधी है। कौन सी 15? हाँ हाँ हाँ, ये तो मिथ्या तो गुणस्थान में, ये तो बनने वाली प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान में ये बंधेगी, पहले गुणस्थान में भी बंधेगी, क्योंकि वहाँ अनंतानुबंधी है ही है, यानी पहले गुणस्थान में वो 16 भी बन रही है और ये 25 भी बन रही है। पहले गुणस्थान में तो 117 बन रही है, दूसरे गुणस्थान में वो 16 नहीं बन रही है, पर ये 25 बन रही है। ये 16 और 25 तीसरे गुणस्थान में वो नहीं बन रही, 41 प्रकृति तीसरे गुणस्थान में नहीं बन रही, चौथे में नहीं बन रही, इस तरह से ये उसका अर्थ है। यानी ये अनंतानुबंधी के कारण खास बंधने वाले, पहले गुणस्थान में तो अनंतानुबंधी है, मिथ्या तो भी है, तो सवाल ऐसा होता है ना कि पहले गुणस्थान में बनती थी वो अनंतानुबंधी के कारण बनती थी, आप मिथ्यात्व के कारण क्यों कहते हो, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो देखो उसका उत्तर यहाँ बताया है, पढ़ के फिर आप अपनी भाषा में समझेंगे। देखो ये प्रकृतियां अनंतानुबंधी के उदय बिना मिथ्या दृष्टि में केवल मिथ्यात्व से भी बनती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहला गुणस्थान है, मिथ्यात्व का उदय है और अनंतानुबंधी का उदय न हो? हो सकता है। कब होता है? हाँ देखो देखो उसका अर्थ ऐसा है, देखो जब समय दर्शन प्राप्त किया तो उसमें सत्ता में तो मिथ्या तो भी अनंतानुबंधी उसका उदय नहीं है। ऐसा जीव यानी जो वेदक समय दृष्टि है, सूक्ष्म समय दृष्टि, वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है। वो विसंयोजना नाम का प्रोसेस ऐसा है कि वहां पर भी तीन करण होते हैं, जो अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, और सत्ता में जितना अनंतानुबंधी पड़ा है, अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण निषेक पड़े हैं, वो सारे के सारे परमाणु चौथे गुणस्थान वाला होगा, तो अप्रत्यकान, प्रत्यकान, संतुलन आदि रूप होकर वहां जो बनती है प्रकृतियां, उस रूप संक्रमित होकर नष्ट हो जाते हैं, सत्ता में अनंतानुबंधी नहीं रहता है। परंतु ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल हो सकता है। वो जीव अगर मिथ्यात्व में जावे, मिथ्यात्व में गया है तो अभी उसकी सत्ता में तो अनंतानुबंधी नहीं है, मिथ्यात्व में जाते ही अनंतानुबंधी का बंध तो चालू हो गया, बंध शुरू हुआ, उसके परिणामों में भी अनंतानुबंधी कषाय शुरू हुई है, नया बंध भी शुरू हुआ है, परंतु बंध के बाद आवली तक उसका उदय नहीं हो सकता। एक ये रूल है, उदीर्णा से भी उदय होता है तो आवली काल के पहले नहीं हो सकता। यानी आवली तक क्या पोजिशन है, अनंतानुबंधी परिणाम भी चल रहे हैं, अनंतानुबंधी कर्म का बंध भी हो रहा है, परंतु अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। ऐसी अवस्था में ये सारी 16 प्रकृतियों का बंध किस निमित्त से हो रहा है, तो क्या मिथ्या से? ये उसकी यानी पॉइंट सूक्ष्म है, परंतु ये उसको प्रूव करता है। यानी वो पहले गुणस्थान में भी जो बनती थी वो मिथ्यात्व के कारण बनती थी, अनंतानुबंधी के कारण नहीं। इस उसका फिर से इसको पढ़ेंगे। देखो ये प्रकृतियां अनंतानुबंधी के उदय बिना मिथ्या दृष्टि में, यानी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में, यहाँ गुणस्थान को भी मिथ्या दृष्टि कहा है, केवल मिथ्यात्व से भी बनती है, मात्र मिथ्यात्व से भी बनती है, और साधन में मिथ्यात्व के उदय बिना केवल अनंतानुबंधी से भी बनती है, इसलिए इनका कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों जाना। ये 25 की बात चल रही है। अभी इसी का विशेषार्थ नीचे दिखा, देखो जहां जहां विशेषार्थ या ऐसे तिरछे लेटर्स में लिखा वो मैंने अपनी ओर से लिखा है, और पंडित टोडरमल जी की जो बात है वो सीधा उसका अनुवाद है। ऊपर जो मिथ्यात्व गुण स्थान में केवल मिथ्यात्व से बंध कहा, उसका कारण यह है कि जो समय दृष्टि जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के पश्चात मिथ्यात्व में जाता है, यह हो सकता है उसके पर ऐसे परिणाम हो गए जो मिथ्यात्व में चला गया, उसके अनंतानुबंधी का नया बंध तो प्रारंभ होता है परंतु आवली काल तक उसका उदय नहीं पाया जाता। इस कारण उतने काल तक मात्र मिथ्यात्व के उदय में ही बनती है। पहले गुणस्थान वाले को मिथ्यात्व भी है और अनंतानुबंधी है, तो दोनों के कारण बंध हो रहा था, पर वो अकेले मिथ्यात्व से भी वो बनती है, ये कहना चाहते हैं। शासावन में तो मिथ्यात्व का उदय है ही नहीं, वहां तो मात्र अनंतानुबंधी के उदय में ही ये प्रकृतियां बनती है। ऊपर के किसी गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का उदय होता ही नहीं, इस कारण इन 25 का बंध भी आगे कहीं पर भी नहीं पाया जाता। ये 25 जो प्रकृतियां बता रही है, पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों से बन रही है, क्योंकि आवली काल तक अनंतानुबंधी नहीं थे, फिर भी ये पहले गुणस्थान में बनती थी, तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों के कारण बनती है, और दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी के कारण बनती है, ये कहना चाहते। तो पहले गुणस्थान की विच्छित्ति कितनी देखी हमने, और दूसरे में 25। तो वहां दूसरे में कितनी बंधेगी, देखो पहले गुणस्थान में बंधने वाली 117 थी, 3 तो अबंध है, अबंध में रखी, अब वो दूसरे गुणस्थान में वो 16 नहीं बंधेगी, अबंध तो 3 की 3 रहेगी यहाँ पर, तो 117 में से वो 16 नहीं बंधेगी, 101 बंधेगी, वहां बंदर 101 कहेंगे। यहाँ की विच्युति 25, परंतु वो 25 यहाँ बंद रही है, वो 101 में इंक्लूडेड है, बाद में आगे उसको माइनस करेंगे। अब इसके लिए जो पेज नंबर 113 का जरा टेबल देखो, 113 पर देखो, ऊपर गुणस्थानों के नंबर लिखे हैं, यहाँ जो हमने केवल गुणस्थान विच्छित्ति इतना ही लिखा है, उस टेबल में वो बंद और अबंध ऐसा भी लिखा है। आपके पुस्तक में कर्मकांड की पुस्तक में 113 नंबर के पृष्ठ पर एक टेबल बनाया है, उसमें गुणस्थान और विच्छित्ति जो अपने बोर्ड पर है वो तो वहां लिखा ही लिखा है, वहां बंद और अबंध प्रकृतियों की भी संख्या लिखी है। तो पहले गुणस्थान में 117 बनती है, 3 नहीं बनती उसको अबंध में रखा, यहाँ विच्छित्ति होती है 16, 16 की विच्छित्ति नहीं, वो 117 में उसको गिना है हमने, है ना, अभी इसके आगे वो नहीं बंधेगी, तो 117 में से वो 16 गई, तो 101 दूसरे गुणस्थान में बंधेगी, वहां अबंध में कौन सी, अभी वो पहली 3 और ये जो विच्छित्ति हो गई वो 16, वह 19 प्रकृतियां अबंध में चली गई। हाँ वही, ये नीचे जो बंध अबंध की टोटल हमेशा 120 रहेगी, यहां पर 25 विच्छित्ति जो 101 में जो बंध रही थी उसमें से 25 आगे कहीं नहीं बंधेगी। तो तीसरे गुणस्थान में देखो, अभी पहले यहां टेबल बताती हूँ फिर हम पढ़ेंगे उसको, वहां 74 लिखी है, देखो यहां तो 25 की बंध विच्छित्ति हुई और वहां 19 थी, 19 और 25 कितने होने चाहिए थी, 44 होनी चाहिए थी, पर तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता। 16 में हमने नरकायु को देखा था और 25 में तीरियंश आयु को देखा, बाकी दो आयु भी तीसरे गुणस्थान में नहीं बंधेगी, चौथे में बंधेगी, देवों को मनुष्यायु बंधेगी, मनुष्यों को देवायु बंधेगी, वो आगे के गुणस्थानों में बन सकती है, इसको यहाँ अबंध में रखा। इसलिए 19 और 25 प्लस दो आयु तीसरे में नहीं बंधेगी, इसलिए यहाँ अबंध में 46 लिखे। 120 में से 40 माइनस कर दो तो वहां बंधने वाली कितनी रहेगी, 74। यहाँ कोई बंधे विच्छित्ति नहीं है, इसलिए तीसरे में जीरो कहा बंधे विच्छित्ति। फिर चौथे में बढ़ेंगे हम, वो दो आयु जो हमने अबंध में डाली थी अब बंधने लगेगी, और तीर्थंकर प्रकृति जो हमने अबंध में रखी थी वो भी बंधेगी किसी, तो उसमें इंक्लूड कर। इस तरह से आगे का हिसाब चलेगा। अभी हम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे, निकालना अपना पेज। पहले सभी की विच्छित्ति बताएंगे, बाद में बंध अबंध विच्छित्ति सब वो सब टेबल हम पढ़ेंगे फिर दोबारा। शुरुआत में कठिन लगेगा, एक बार वो ख्याल में आ जाएंगे, थोड़े प्रकृतियों के नाम से परिचित हो जाएंगे, है ना। पहले दो गुण स्थान की बात समझ में आई, 16 और 25। अब 25 जरा याद करने में कठिन होगी, पहले तो अनंत अनुबंधि की चार गिन ले, तीन वस्ते अनुबंधि वगैरह, तीन बीच वाले चार संस्थान चार सहन, तीन इंच संबंधी चार, तीर इंच गति तीर इंच गत्यानुपूर्वी उद्योता तीर इंच दुर्भग दुस्वर अनादे त्रिवेद निज गोत्र और प्रशस्त ज्ञान, ये थे सभी 25 हो जाते। वो 16 तो पहले गुणस्थान की विच्छित्ति है, अगर उसको दूसरे गुणस्थान की विच्छित्ति मानेंगे 44 को, तो वो वहाँ बनती है ऐसा प्रसंग आएगा, जो वहाँ बनती है उसी की विच्छित्ति कह सकते, उस गुणस्थान में वो बंधना चाहिए,
वो बाकी
अबंध में गिनेंगे, नहीं बंधने वाले में गिनेंगे उसको। विच्छित्ति तो जहाँ वहाँ जो बंध रहे हैं उसी को विच्छित्ति मिले। अभी चौथे गुणस्थान में कितनी विच्छित्ति हो गई वो कहेंगे, अभी यहाँ पर पढ़ेंगे पेज नंबर 109। कौन सा होता ही है, होता ही है ये सब जो है, आपने जो अभी गिने ना कौन कौन सी, पहले गुणस्थान में किस किस का बंध होगा, छह संस्थान छह सहनन बन सकते हैं कि नहीं, समझ में ये सब आ गया उसमें। पहले गुणस्थान में ये सारी 25 बन रही है, क्योंकि 117 में ये सब थी कि नहीं थी। हाँ, इनका प्रश्न ऐसा है, ये 25 प्रकृतियाँ पहले गुणस्थान में बनती थी क्या, नहीं बनती थी, बनती थी, क्योंकि हमने 117 सबको सब गिनी थी बनने वाली, केवल तीर्थंकर और आहारत द्वीप को नहीं बनने वाली में गिना था। तो ये 16 भी और 25 भी ये सब पहले गुणस्थान में बनती थी, इनमें से वो 16 तो पहले गुणस्थान तक ही सीमित है, वो दूसरे में तीसरे में आगे नहीं बनती। दूसरे गुणस्थान में पहले वाली 16 तो नहीं बंधेगी, वो पहले वाली वहाँ ही बंधने वाली थी, पर यहाँ जो ऑलरेडी बंध रही है 25 वो आगे नहीं बंधेगी, तो उसकी विच्छित्ति यहाँ हुई है ऐसा कहेंगे। दूसरे गुणस्थान को बंधने में 101 में उसको गिन रहे हैं, 25 प्रकृतियों को 101 में गिन कर बात चल रही है, उसमें वो पहले गुणस्थान की 16 और वहाँ की अबंध 3 ये मिलकर 19 को हम अबंध में रखें और 101 को बंधने में देखेंगे। अभी हम चौथे गुणस्थान की बंधे विच्छित की देखेंगे, कितनी संख्या लिखी यहाँ चौथे गुणस्थान के लिए, 10। देखो चौथे गुणस्थान में 10, उस वहां का कषाय कौन सा है जो वहां पर है आगे नहीं है, अप्रत्यक्षानंद का उदय है तो अप्रत्यक्षानंद का बंध वहीं तक है, ऊपर नहीं है, तो 4 तो वो गिन रहे, अभी 6 वाक्य रह गए, तो 6 किस संबंधी है, तो मनुष्य गति संबंधी 6, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, कौन सा शरीर बंधेगा उसके साथ, औदारिक औदारिक अंगोपांग, तो औदारिक शरीर बंध रहा है और सम्य दृष्टि है तो वज्रषद नाराज सहन भी बंधेगा और मनुष्यायी, ये 6 प्रकृति चौथे गुणस्थान में बंध योग्य है, वो आगे कहीं पर भी नहीं बंधेगी। अब उसका कारण भी देखते, ये कौन बांधेगा, मनुष्य बांधेगा कि तीर इंच बांधेगा, तो कहते नहीं देव और नार की समय दृष्टि इन प्रकृतियों को बांधेगा और उनके गुणस्थान चार ही होते, इसलिए आगे बंधने का सवाल नहीं है। समय दृष्टि मनुष्य है, समय दृष्टि मनुष्य, मनुष्य गति, मनुष्य आयु कुछ नहीं बांध रहा है। समय नहीं, समय दृष्टि मनुष्यों के लिए दूसरे गुणस्थान में 25 के साथ ये 6 को गिनेंगे हम, मनुष्यों के लिए ये 6 की बंधन विच्छेद की दूसरे नहीं कहेंगे। मनुष्य समय दृष्टि होने पर देवगति का ही बंध निरंतर करता है, हर समय देवगति का ही बंध करेगा। तीरियंचों में भी यही कंडीशन, मनुष्य और तीरियंचों के लिए यही कंडीशन है। तो मनुष्य भी और तीरियंच भी, उनके लिए दूसरे गुणस्थान की बंध विच्छेद 25+6 कहेंगे। ये समझ में आई ना बात? हाँ, वहां तो यानी मनुष्यों में या तीरंचों में समय दर्शन होने पर 47 प्रकृतियों का बंध रुक गया। चौथे में जाते हैं तो उनके लिए चौथे गुणस्थान की बंध विच्छेद में हम 4 को ही गिनेंगे। यहाँ तो इन जनरल बात हो रही है, चारों गति में विदाउट डिफरेंशिएटिंग ये चौथे गुणस्थान में ये बनती है, आगे कहीं नहीं बनती है। पर किसके बन रही है? तो देवनारकियों को, समय दृष्टियों को बन रही है। उनकी अपेक्षा से 10 कहा है। एक तो इन जनरल जिसको ओघ में कहते हैं, इन जनरल जहां जो लागू होता है जिस गति में उसकी अपेक्षा पता है, और स्पेसिफिक हम जिस गति में, क्योंकि अभी गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, हर मार्गणा में उसके अपनी अपनी स्पेशल कंडीशन जुदी होगी। क्योंकि कौन सी मार्गणा वाले कौन सी प्रकृति आप बांधते हैं और उस मार्गणा में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं, उसके अनुसार वहां ये सब बंध अबंध विच्छेद सब कहेंगे। देव और नारकियों में 4 ही गुणस्थान है, तो 4 ही गुणस्थान की बात करेंगे। उनमें जो बंध योग्य है उसी में से हम विच्छुति कहेंगे, जो बनते ही नहीं तो उसको विच्छुति भी नहीं कहेंगे। इसलिए पहले हम इन जनरल बात करेंगे। तो चौथे गुणस्थान में कितने की विच्छुति होती है? तो 10 की, उसमें 4 तो अप्रत्याख्यान और फिर 6 मनुष्य गति संबंधी जो है। समझ में आते हैं ना? ये समय दृष्टि जिन प्रकृतियों को बांध रहा है उसमें से इनकी विच्छुति कहेगी। तो चौथे गुणस्थान वाले कौन ये बांध रहे हैं, मनुष्य गति वगैरह? देवनार की समय दृष्टि। अब इसका यहां से पढ़ेंगे, देखो 109 पेज पर 97 की टीका। असंयत गुणस्थान के अंतिम समय में अप्रत्याख्यानावरण कषाय 4 वज्र ऋषभ नाराज सहने औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग ये 2 मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी ये 2 तथा मनुष्यायु ये 10 प्रकृतियां बंध से विच्छित्ति रूप होती है, क्योंकि ये प्रकृतियां अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से बनती है। इनसे बनती है कहने से अप्रत्याख्यानावरण से अप्रत्याख्यानावरण तो बनती है, पर मनुष्यों में यह अप्रत्याख्यानावरण का उदय होने पर भी ये नहीं बन रही है। समझ में नहीं आ रहा? उनके लिए वो तो उसकी बंध विच्छेद पहले ही हो जाती है। पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां देखती थी? 16। दूसरे में 25। तीसरे में 0 और चौथे में 10। तो पहले से एकदम पांचवें गुणस्थान में जाने वाले को कितनी प्रकृतियां बंधेगी? अभी इतनी नहीं बंधेगी, सब 16 और 25 41 और 10 51 नहीं बंधेगी। समझ में आती है बात? चौथे से पांचवे में जाए या पहले से पांचवे में जाए, उसको तो एक कौन प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा, ये कहना चाहते। अब देश संयत गुणस्थान के अंतिम समय में, यानी ये देश संयम में बंध रही है, आगे नहीं बंध रही है, उसका अर्थ है 4 प्रत्याख्यानावरण कषाय के नियम से विकसित की होती है। यहाँ प्रत्याख्यानावरण का उदय है तो वो 4 बंध रहे हैं, उसके आगे उनका बंधन नहीं है, क्योंकि अपने उदय के निमित्त से बनती है। ये पांचवे का तो आसान है ना, प्रत्याख्यानावरण 4 की। छठे में कितने लिखे हैं? 6। तो छठे की जो 6 है ना, सब अ अ अ वाली है और एक ही वो शोक वाली है, वो कौन सी है देखेंगे अभी। छठवे प्रमत्त गुणस्थान के अंतिम समय में अस्थिर अशुभ असाता वेदनीय अयशस कीर्ति अरति और शोक, ये 6 नियम से विच्छुति रूप होती है। क्योंकि ये प्रमाद के निमित्त से बनती है। देखो ये छठवां गुणस्थान मुनिराज का है और उनका रेगुलर छठा सातवा छठा सातवा चलता है, तो ये अस्थिर आदि यहाँ तक बंद रही है। सातवें में जाएंगे तो अस्थिर वगैरह का बंद नहीं होगा, छठे में आएंगे स्थिर का भी हो सकता है अस्थिर का भी हो सकता है। अकेले अस्थिर का होता है ऐसा उसका आता नहीं, स्थिर अस्थिर ऐसा वहां दोनों पॉसिबल है। छठे गुणस्थान में सांदा वेदनीय भी बन सकती है, असाता भी वेदनीय बन सकती है, सातवें में मात्र साता का ही बंद होगा। ये जो यहाँ जो बंद रूप विच्छित रूप बताए ना, अस्थिर अशुभ असाता वेदनीय अशिस्थिति, यानी छठे गुणस्थान में अस्थिर या स्थिर दोनों ही ऑप्शन है, बंधेगी शुभ अशुभ दोनों ही का बंद होगा, दोनों ही एट अ टाइम में प्रतिपक्षी है ना। ये साता भी बन सकती है असाता भी बन सकती है, यशस कीर्ति भी बन सकती है अयशस कीर्ति भी बन सकती है, और रति शोक भी बन सकता है और रति और हास्य भी बन सकता है, हास्य रति भी बन सकता है। ये समझ में आई बात? पर सातवें में ये वाली अप्रशस्त प्रकृतियां दो, वो भी अप्रशस्त है परंतु ये नहीं बंधेगी। हास्य शोक हास्य और रति भी अप्रशस्त ही है परंतु ये अति अप्रशस्त है क्योंकि मौनीय सारे अप्रशस्त ही होते हैं। तो ये कौन कौन से? अस्थिर अशुभ असाता वेदनीय अयशस कीर्ति अरति और शोक, ये छठे गुणस्थान की होती। पुनश्च श्रेणी चढ़ने के लिए जिसके अधर करणादि नहीं हुए हो ऐसे स्वस्थान अप्रमत्त। देखो इसका अर्थ क्या है मुनिराजों का? हाँ मुनिराजों का गुणस्थान कौन सा है? छठा सातवा छठा सातवा। छठे का नाम क्या है? प्रमत्त संयत। सातवें का नाम अप्रमत्त संयत। तो छठा सातवा रेगुलर चलता है उसको कहेंगे स्वस्थान, यानी सातवें वाले को स्वस्थान अप्रमत्त। और जब वही सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज श्रेणी के सम्मुख होकर तीन करण मानते हैं तो पहला अधर प्रवृत्त करण सातवें में बीत जाता है, दूसरा अपूर्व करण का गुणस्थान ही अपूर्व करण आठवां, तीसरा जो करण है अनिवृत्ति करण वो नौवें गुणस्थान में चला जाता है। इसलिए ये जो अधकरण वाला जो है जिसको सातिशय अप्रमत्त कहते हैं वहां विशुद्धि ऐसी कि वहां आयु का बंधन नहीं होता। आयु का बंधन कहाँ हो सकता है? स्वस्थान अप्रमत्त, वो भी कहाँ? छठे में शुरुआत किया हुआ आयु का बंधन सातवें में कंटिन्यूस रह सकता है, ये उसका अर्थ है। वहां नया से बंध भी नहीं चालू होगा परंतु देवायु देवायु बनती है यहाँ पर, अन्य कोई नहीं आयु बनती है, तो उसका यहाँ बंध विच्छित्ति होती है। इसके आगे के गुणस्थानों में कहीं पर आयु का बंध नहीं होगा, देवायु का भी बंध नहीं होगा। इसलिए सातवें गुणस्थान में एक ही प्रकृति लिखी है, कौन सी है वो? देवायु। फिर इसको पढ़ते इसका अर्थ देखो। देखो श्रेणी चढ़ने के लिए जिसके अधम करणादि नहीं हुए हो ऐसे स्वस्थान अप्रमत्त संयत के, यानी जो रेगुलर छठे सातवें वाले उसमें से सातवें की बात चल रही, अंतिम समय में देवायु विचित्र रूप होती है। अंतिम समय में कहने का है कि आठवें अगर आगे वगैरह कहीं नहीं बनती, स्वस्थान का अंतिम समय यानी वो अप्रमत्त सातिशय अप्रमत्त में भी नहीं बन रही, ये उसका अर्थ है। आगे नहीं बनती उसको अंतिम समय कहने में आता है, नहीं तो आप कहेंगे सातवें के अंतिम समय के बाद छठा आता है तो वह नहीं बनेगी कि हाँ वही बनेगी, ऊपर नहीं बन रही उसके नीचे बन रही, क्योंकि अधक करणादि रूप परिणत हुए सातिशय अप्रमत्तादि गुणस्थानों में देवायु के बंध के कारणभूत मध्यम विशुद्धता रूप संज्वलन के परिणाम नहीं पाए जाते। आयु बंध का ऐसा नियम है वो मध्यम परिणामों में बनती है, अति विशुद्ध परिणामों में अति संकलेश परिणामों में आयु का बंध नहीं होता। ये जो बंधे योग्य परिणाम है लेकिन आठ अपकर्षकाद होते हैं वहां मध्यम उसके परिणाम होते हैं, हर एक लेशा में कुछ मध्यम परिणाम लेशा के मध्यम अंश होते हैं तभी आयु का बंध होता है। वो सहज वैसा होता है, वो कोई सोच समझ कर जीव कोई आयु नहीं बांधता है, हम तो बांधना चाहते हैं सोच समझ कर, कहाँ की? विदेह क्षेत्र की, महाविदेह में जाना है सबको क्योंकि यहाँ मिथ्या दृष्टि रहना चाहते हैं, नहीं समझे? विशुद्धि उत्कृष्ट विशुद्धि से नहीं, जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वहां तीन आयु की स्थिति लंबी होगी, पण विशुद्धी ज्यादा आहे आणि बंद योग्य विशुद्धी नाही वो ज्यादा समजणार. अति विशुद्धी वाला नाही, शनी में कोई विशुद्धी ज्यादा ज्यादा आहे, वहां आयु का बंद नहीं होता. मनुष्यायु का, तिर्यंचायु का, देवायु का स्थिति बंद ज्यादा कहाँ होगा? आयु के बंद योग्य जो परिणाम है उसमें जहां मंद कषाय रूप विशुद्धि है वहां उसका लंबा स्थिति बंद ज्यादा होगा, ये उसका उसके योग्य विशुद्धि समझना. आयु बंद की योग्य विशुद्धि जुदी और टोटल विशुद्धि ज्यादा वो अलग बात. वो किसमें हम कंसिडर करेंगे? अन्य प्रकृतियों में. समझ में आती है? फिर प्रश्न पूछना, ग्यारह में से कोई चौथा आता है मरण पर. हाँ तो प्रश्न क्या है?
छठे अवस्था में आया उस समय बंधन योग्य आयु बंधन के योग्य परिणाम के लिए.
ग्यारह में से गिरकर जो चौथे में आता है कब आता है? मरण पर ही आता है, डायरेक्ट तो नहीं आता. तो मरण करके कहाँ चला जाएगा? देव में. और देव में आयु कब बांधेगा? अंतिम छह महीने में.
नहीं नहीं, अभी इसी पर्याय की बात कर रहे हैं. मुनि राज है कोई.
हाँ,
ग्यारह प्रसाद से मृत्यु को प्राप्त हुए.
हाँ,
तो फिर इसके बीच में छठे में आए, इसका मतलब
देखो देखो, ग्यारहवें गुणस्थान में से जो गिरता है ना, जो मनुष्य में ही रहते हुए गिरता है, वो नियम से ग्यारहवें से दस, दसवें से नौ, नौवें से आठ, आठवें से सात, सातवें से छः, यहाँ तक तो नियम से क्रम से ही आता है छठे तक. बाद में छठे से डायरेक्ट चौथे में जा सकता है, छठे से पांचवें में जा सकता है, चौथे में जाकर फिर दोबारा ऊपर आ सकता है. यदि आयु नहीं बांधी है, हाँ, इनका ऐसा प्रश्न है जो अबद्ध आयु है, जिसने आयु का बंधन नहीं किया है, और ऐसे मुनिराज ने श्रेणी चढ़ी है, और श्रेणी चढ़कर अगर उतरते हैं, वो बीच में श्रेणी में तो नहीं मरेंगे, अभी आयु का बंधन नहीं किया है, तो वो क्रम से उतरेंगे. क्रम से कहाँ तक? छठे तक क्रम से उतरेंगे. हाँ, अभी छठे गुणस्थान में आयु का बंध कर सकते हैं, सातवें में स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर छठे सातवां करते हुए छठे में बंद करके सातवें में पूरा कर सकते. उतरने के बाद आयु का बंध कर, ऐसे भी जीव है ना, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे हैं और फिर कालांतर से यानी वो क्रम से उतरे छठे तक, फिर बाद में कुछ काल तक समय दृष्टि रहे अथवा नहीं रहे, मिथ्यात्व में भी गए और मिथ्यात्व में जाकर आयु का बंध किया, ऐसे भी जीव है. तो मिथ्यात्व में जाकर करेंगे तो चारों गति चारों आयु संबंधी उसको बंद कर हो सकता है. हाँ, कहाँ? ग्यारहवां गुणस्थान. उपशम श्रेणी में भी कितना पुरुषार्थ होता है पता नहीं, कितना कितना ये सारे जो उसका वर्णन पढ़ेंगे, कितनी निर्जरा, कितने क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. उपशम श्रेणी में भी अलौकिक पुरुषार्थ होता है.
आपने अभी महाविद्या क्षेत्र का बोला और क्या दृष्टि
आपको ये उत्सुकता है कि हम तो महाविद्या में जाना चाहते थे और आपने रोक लगाई, ऐसा क्यों? हमने ये बोला है यहाँ से महाविदेह में जन्म लेना चाहता है. देखो, एक तो पहली बात की ये तो जहाँ हम आगे का जन्म एक भव भी निश्चित करना चाहते नहीं, वहाँ आयु बांधना चाहते हैं, तो उसके एक भव की भी चाह है तो उसके तो अनंत भव की चाह पड़ी, ये तो नक्की है ही. अभी उसकी बात छोड़ दो. अभी हमने क्या देखा था कि यहाँ का जो मनुष्य है, समय दृष्टि हुआ तो समय दर्शन के बाद अभी वो मनुष्य आयु बांधेगा क्या? अभी हमने देखा विचित होगी उसके दूसरे, यानी समय दृष्टि मनुष्य समयत्व के बाद अगर आयु बांधता है तो वो देवायु ही बांधेगा. आप कहेंगे कुछ बात नहीं, पहले हम महाविदेह की आयु बांधेंगे, बाद में समयत्व प्राप्त करेंगे, इसमें तो कोई बाधा है नहीं ना. तो जिसने पहले मनुष्य कोई भी आयु बांधी क्यों ना हो, चारों आयु में से कोई भी आयु बंधी हो, उसको समयत्व तो प्राप्त हो सकता. अब हम ऐसा जीव इमेजिन करेंगे कि जिसने समय दर्शन प्राप्त किया है और समय दर्शन प्राप्त करने के पहले उसने मनुष्यायु बांधी है, अब उस जीव की क्या पोजीशन होगी? भू भूमि में वही जा सकता है समय को लेकर जो क्षायिक समय दृष्टि है. पंचम काल में तो कोई क्षायिक समय दृष्टि है नहीं.
कट
यानी जिसने पहले मनुष्यायु बांधी है, अब पंचम काल में जिसने समय तो प्राप्त किया है, अब उसको जीव को मरकर मनुष्य में बनना है तो क्या होना पड़ेगा? उसका समय तो छूट जाएगा, मिथ्या तो में चला जाएगा, मनुष्य आयु ऑलरेडी बांधी है, तो कहीं का भी मनुष्य हो सकता है जहाँ की आयु बांधी है। महाविदेह में भी 5 मिलिंच खंड और 1 आर्य खंड है, और वो महाविदेह में भी कहाँ जाना चाहता है? सिमंदर पास। जुमंदर बाबू स्वभाव संजय दत्त स्वयं प्रभु कोई नहीं चलेगी उनके, क्योंकि इन्होंने पहले अपना निमित्त नक्की कर दिया है, क्योंकि निमित्त से हमारा कार्य होने वाला है जो हम यहाँ नहीं करना चाहते, और हम आगे के भाव का यहाँ रिजर्वेशन काय का एक बहाना बनाना चाहते हैं। जो बात अभी इस भाव में आज कर सकते हो, और अगले भाव में सीमंदन के पास जाकर करने की क्यों चाह कर रहे? समय तो प्राप्त करना तो सबसे सरल बात है, उसके इतना सरल कुछ नहीं। आपका व्यापार धंधा सब कठिन बात है, पर द्रव्य की चीज आपके हाथ में है ही नहीं, फिर भी उसके पीछे हम पूरे 24 घंटे अपना रात दिन भी वही चलता है अपने मगज में।
कैसे प्राप्त करें?
अभी आज सुबह क्या सुना गुरुदेव के प्रवचन में? अब उसको ज्ञान में निर्णय होना चाहिए, तत्व निर्णय सबसे महत्व की बात है। ये कोई भी कंफ्यूजन संशय उसके लिए बात नहीं चलेगी। अभी उसका विषय हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा। यानी अभी सभी ग्रंथों में तो यही बात है, मुख्यता तो उसी की है, भले हम करना योग की चर्चा करें, मुख्यता तो वेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्मानुभव करने की ही।
आयु बांधेगा उससे क्षेत्र थोड़ी बनता है।
आयु बनती है तो कहाँ जन्म लेगा वो सब कुछ निश्चित हो जाता है उसका। अकेले क्षेत्र निश्चित नहीं होता है, कितनी आयु बांधी, कहाँ जन्मेगा, किसके माता पिता कौन होंगे, सबको निश्चित होगा कि नहीं होगा। ये तो आदि रात ने कैसे डिक्लेयर कर दिया, ये त्रिशला और सिद्धार्थ का पुत्र हो जाएगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ निश्चित है। हम क्या कर सकते, जो कर सकते वो करना नहीं चाहते, और हम क्या कर सकते? आप अपना स्वरूप निश्चित कर सकते, स्वरूप निश्चित करते ही समय दर्शन गारंटी से है। हमें तो समय दर्शन की तो बहुत महिमा आती है, परंतु तो अपने ज्ञायक स्वभाव की, अपनी शुद्धात्मा की महिमा नहीं आती। सब चाहते हमको समय दर्शन कब हो, समय दर्शन कब हो, समय दर्शन कब हो। अरे समय दर्शन अपने जो पर्याय में निश्चित है वो कहाँ चला जाएगा, वो तो आना ही उसको समय पर, परंतु कब आएगा? जो ज्ञायक अपने स्वभाव की दृष्टि करेगा उसको होगा। उसके लिए क्या, उसमें आज कितनी बात स्पष्ट आ गई है ना। अभी क्या कहें, भेद की दृष्टि छोड़कर अभेद को लक्ष्य करना है वहां पर। हाँ,
मनुष्य अभी हमने बताया कि मनुष्य आयु का एक बार बंद हो गया, फिर इसने सम्यक्त्व किया, और फिर सम्यक्त्व वापिस, मतलब कि मनुष्य का आयु का बंद होकर अगर उसकी स्थिति एक कोटि पूर्वक के ऊपर की बंधेगी तो वो नियम से भोग भूमि में जाएगा।
हाँ।
और अगर कम बनती है तो कर्म भूमि में जाएगा, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी।
केवल कितनी स्थिति बन गई ऐसी बात नहीं है, भोग भूमि के बांधेगा तो नियम से वो करोड़पुर के ऊपर की बांधता है, परंतु सम्यक्त्व लेकर जाने के लिए उसको क्षय होने की कंडीशन आवश्यक है।
और अगर समझो कि सम्यक्ताई नहीं है, अलग है, तो नियम से वो सम्यक्त्व छोड़ेगा, और स्थिति बड़ी है तो भोग भूमि में जाएगा।
मिथ्या से जा नहीं सकता है, मिथ्या दृष्टि उसमें तो कोई रोकावट है ही नहीं। सम्यक्त्व लेकर जाने वाले के लिए क्षय की कंडीशन है। देखो, जिसने पहले नरकायु बांधी हो, जिसने पहले तिर्यंचायु बांधी हो, जिसने पहले मनुष्यायु बांधी हो, वो यदि बाद में समय दृष्टि होता है और सम्यक्त्व लेकर उस पर्याय में जाना है तो उसके क्षय की कंडीशन है। जैसे श्रेणिक राजा ने पहले नरकायु बांधी थी, बाद में समय दृष्टि हुए, सारे समय दृष्टि नहीं हुई, वो क्षायिक हुए, तो क्षायिक को लेकर गए। अगर क्षायिक नहीं करते तो क्या होता, छूट जाता उनका। ऐसा ही यहाँ किसी ने मनुष्यायु बांध ली है और मनुष्यायु के बाद उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया है। अब ये तो सम्यक्त्व लेकर तो मनुष्य में नहीं जाएगा यहाँ से, चाहे क्या, चाहे की कोई ये है ही नहीं सहूलियत, तो क्या हुआ उसका, सम्यक्त्व छूट जाएगा। वहां जाके हो सकता है उसको सम्यक्त्व हो जाएगा, हम कहेंगे वो मोक्ष भी जा सकता है, हमें कोई उसमें कोई बात ये नहीं है कि वो नहीं जा सकता।
फिर वो भोग भूमि का मनुष्य बने।
भोग भूमि का कैसा बनेगा? उसने आयु अगर कर्म भूमि संबंधी बांधी, यानी छोटी आयु है तो कर्म भूमि का मनुष्य हो सकता है, विदेह में जाकर वहां से मोक्ष भी हो सकता है, उसकी ना नहीं है। परंतु यहाँ अगर समय दृष्टि हुआ है तो मिथ्या दृष्टि भोगना पड़ेगा उसको, या मिथ्या तो में ही रहकर हो चला जाएगा, ये बात कहना चाहिए। कृतकृत्य वेदक का अर्थ वो क्षायिक होने वाला ही, क्षायिक जैसे उसका नियम समझ लो। परंतु वो भी इस भव में यहाँ नहीं होगा पंचम काल में। जो क्षायिक होने वाला है वही कृतकृत्य वेदक का अंतर्मुख पहले की कंडीशन है कृतकृत्य वेदक।
गिरेगा तो उतने आयु प्रमाण उसका रहेगा ही रहेगा, शेष में पूरा अंतर्मुहूर्त तक उसका आयु बनता रहे जिस भी गति में जाना है, और फिर वो अभी तक उसका उदय नहीं आया और फिर उसकी मृत्यु, ऐसा प्रमाण निश्चित रहेगा।
देखो देखो, ग्यारहवें से गिरने के बाद इमीडिएटली अंतर्मुहूर्त में आयु का बंध होना चाहिए, कोई कंडीशन जरूरी नहीं है।
अंतर्मुहूर्त तक
जहाँ जब से आयु का बंध शुरू होता है तो मिनिमम अंतर्मुहूर्त तक बनती बनती है, और आयु का बंध होकर रुके और इमीडिएट मरे ऐसा कभी नहीं हो सकता। आयु बंध होकर रुकने के बाद भी अंतर्मुहूर्त चला जाता है, उसके बाद ही मरण होता है किसी का भी। अभी आयु बांधते बांधते कोई नहीं मरता है, अभी आयु बंदी पूर्ण हुई और नेक्स्ट समय में मरा, ऐसा भी किसी का नहीं होता है। यथा योग्य उसके बाद इतना काल चला ही जाता, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। बहुत सारे हैं, जैसे कोई समय को से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आ जाएगा तो एक समय में नहीं मरेगा, साधन में जाकर एक समय में मर सकता है। अभी ऐसे कंडीशन बहुत है, नियम बहुत है, आप सारे नियम अभी पूछेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत होने वाला है। आपका ये प्रश्न है, अगर आठ अपकर्ष काल जो बताया है वहाँ आयु बंधन नहीं हुआ तो ऐसा जीव का क्या होगा, कैसा लटकेगा अभी? हाँ, तो उसके अंतिम अंतर्मुहूर्त में बंध होगा, और बंध होने के बाद भी मिनिमम काल तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद मरता है, उसको कहते हैं असंक्षेपाध्या। वो काल अवलिका असंख्या तो अब आ गए, उसको भी अंतर्मुहूर्त कहेंगे रूढ़ी से, उतना तो मिनिमम काल रहेगा ही रहेगा। इमीडिएट आयु का बंध रुक गया और नेक्स्ट समय में मरा, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी आठ अपकर्ष चले गए और ये इतना ही काल बाकी है, वहाँ आयु का बंध करके फिर मरेगा। हाँ, आपका प्रश्न है, ऐसा शास्त्र में है कि इतने अमुक इतने जीव महाविदेह में जाके यहाँ से मोक्ष चले जाएंगे। हाँ, हमने बताया ना, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, मिथ्या तो में जाएंगे, वो मिथ्या तो में चले जाएंगे, वहाँ समय तो प्राप्त करेंगे, संयम धारण करेंगे, चपक्ष नहीं चलेंगे, चले जाएंगे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। परंतु जो हम चाहते हैं ना, यहाँ से जाना चाहते हैं, उसके पीछे अभिप्राय क्या पड़ा है, इसकी बात चल रही है। जा नहीं सकते उसकी बात नहीं है। ये हमने पांचवें उन्नत स्थान की बात देखी थी, अभी समय हमें को आया है। यानी शास्त्र में हमने एक देखा, यहाँ तक पढ़ लेते, देखो पहले उन्नत स्थान में 16, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, पांचवे में 4, छठे में 6, सातवें में 3, कौन सी एक? देवा। पांचवे में 4 होता है ना, प्रत्येक अनल में 4 है, छठे में वो अ वाली सारी अस्थिर शुभ असंतावेनीय अयशस्कीर्ति अस्थिर और शोक, बाकी 16 तो हमने गिना ही थी। हाँ, वो उनके लिए 10 है, मनुष्यों के लिए वो 6 को हम 25 में इंक्लूड करेंगे। वो तो हर एक गति में, हर एक जो मार्गणा में जो अलग अलग विशेषताएं होती है उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी तो इन जनरल बात करेंगे, क्योंकि देव कानार्कियों में बनती है वहां पर, इसलिए उनकी स्थिति पहले नहीं कह सकते थे, किसी के तो बन रही है ना, तो उसको हम यहाँ गिनेंगे। मनुष्य गति गत्यानुभव की यहाँ पर है। बाकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करते हैं। बोलो 24 भगवान।